نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج انشاء اللہ تعالی اللہ ہی کی توفیق سے ہم تیسرا پارہ شروع کر رہے ہیں الحمدللہ. اللہ سے دعا کے ساتھ کہ جتنا ابھی تک پڑھا ہے اللہ تعالی ہمارے عمل میں لے آئے اور ہمارے حق میں حجت بنا دے. آج کی آیات ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 253 سے 257 تک سورۃ البقرہ. بہت امپورٹنٹ سبق اس حوالے سے ہے کہ آج انشاءاللہ تعالی اس میں ہم آیت الکرسی بھی کریں گے. دیکھتے ہیں پہلا پارہ جو شروع ہو رہا ہے. ہم نے دیکھی تھی آخری آیات جو لاسٹ پارے کی تھی، اللہ تعالی نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، اور فرمایا کہ آپ کی رسالت کی یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ وہ واقعات بیان فرما رہے ہیں جو آپ نے نہ کسی کتاب میں پڑھے، نہ آپ کو پہلے سے معلوم تھے. جو یہود کی کتابوں میں تھے وہ بھی بھول بھال گئے ہوئے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل حق بیان فرمائے، بالکل سچ بیان فرمائے. اور یہ بھی کہ ابھی تک ہم نے رسولوں کے بارے میں پڑھا تو ذہن میں بھی یہ آتا ہے کہ کیا رسولوں میں کسی کے مرتبے بلند ہیں اور کسی کے کم ہیں یا ایسا کچھ ہے. تو وہ بھی یہاں بتا دیا گیا کہ تل کا رسول، تل کا سے مراد کون ہے؟ جو رسولوں کی جماعت ہے ان کی طرف اشارہ ہے. تو جب ہمیں پہلے پتا چلا نا انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، تو اس کا مطلب اور بھی کئی رسول گزرے ہیں. اور ان کا کیا حال تھا کہ وہ رسولوں کی جو جماعت ہے، فضلنا، ہم نے فضیلت دی، ہم نے فضیلت دی. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، انسان نہیں فضیلت دیتے، اللہ نے فضیلت دی. بعدہم، ان میں سے بعض کو، علی بعض پر، ایک کو دوسرے پہ برتری دی. فضل کا مطلب ہوتا ہے نا زیادہ، کسی صفت میں زیادہ دینا، زیادہ کر دینا. تو کسی کا وصف دوسرے سے زیادہ بڑھا دیا. ٹھیک ہے، اب یہ کون سی فضیلتیں ہیں جو کہ پیغمبروں کو دی گئیں؟ آپ کو پتا ہے کہ پیغمبر تو بہت سارے آئے دنیا میں، 1,24,000 کا بھی آتا ہے فگر، لیکن ان سب میں اولو العزم پیغمبر پانچ ہی ہیں، یعنی پورے جو ٹاپ کے جس کو کہیں گے نا. اور یہ بھی کوئی انسانوں نے نہیں مراتب بنائے، اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے. ان میں کون کون ہے؟ سب سے پہلے نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے. ٹھیک ہے، اور ان میں بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پہ ہی فضیلت ملی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں بنی آدم کا سردار ہوں گا. اور میں یہ فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فخریہ نہیں بتا رہے، بس اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے تو آپ کا کام آگے بتانا ہے. تو یہ نہیں کہ اپنی کوئی بڑائی کرنے کے لیے بتا رہے ہیں، بلکہ فرمایا میں یہ فخریہ طور پہ نہیں کہہ رہا، مگر یہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ بنی آدم کا سردار میں ہوں گا، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اور میں یہ فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا. اور آدم کی تمام اولاد اور اس کے علاوہ دوسرے بھی میرے ہی جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور زمین پھٹ کر سب سے اول میں ہی نکلوں گا، اور یہ میں بطور فخر نہیں کہہ رہا، اور میں ہی سب سے اول سفارشی ہوں گا، اور میری سفارش سب سے پہلے قبول کی جائے گی. مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ میں ہے. تو یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں میں سب سے اونچا مقام رکھنے والے ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء والمعراج ہوئی تھی تو بیت المقدس میں تمام انبیاء کے امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको आगे किया था कि आप इमामत कराएं, ठीक है। और फिर आप ये भी देखते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर गए हैं, तो आपने देखा ना कि हर आसमान पर मुख्तलिफ पैगंबरों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई, कहीं आदम अलैहिस्सलाम से, कहीं मूसा अलैहिस्सलाम से, कहीं ईसा अलैहिस्सलाम से, कहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। तो इससे भी उनके मुख्तलिफ दर्जात मालूम होते हैं। तो जैसे हम देखते हैं आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, मिनहुम मन कल्लम अल्लाहु और रफा बादहुम दराजात, उनमें से कोई ऐसे भी हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया। किन से अल्लाह ने कलाम फरमाया था? वकल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया अल्लाह ने कलाम किया मूसा अलैहिस्सलाम से, जैसे कलाम करना होता है। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया, बाकियों से तो बतौर बजरिया वही कलाम किया था ना, लेकिन इनके साथ सामने कलाम फरमाया, यानी अल्लाह ताला ने इनसे बातचीत की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे भी गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया था। वो रफा बादहुम दराजात, और बुलंद किया उनमें से बाज़ को दर्जों में, बाज़ को बाज़ से दर्जों में अल्लाह ताला ने ऊपर किया। ये अल्लाह की मर्जी है। एक दफा तिर्मिज़ी में ये रिवायत है कि इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि कुछ सहाबा बैठे बातें कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सहाबियों को बातें करते सुना। एक साहब कह रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलील बनाया, दूसरे ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कलीम बनाया, तीसरे ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रूहुल्लाह बनाया, चौथे बोले आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सफ़ीउल्लाह बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारी ताज्जुब अंगेज बातें सुनी हैं कि इब्राहिम ये हैं, मूसा ये हैं, ईसा ये हैं, आदम अलैहिस्सलाम में है, वो इसी तरह थे, लेकिन मैं हबीबुल्लाह हूँ और मेरा ये कलाम बतौर फख्र नहीं है। मैं ही जन्नत की जंजीर सबसे पहले खटखटाऊंगा और अल्लाह मेरे लिए जन्नत को खोल देगा, यानी सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल होंगे और मुझे अंदर दाखिल फरमाएगा, और उस वक्त मेरे साथ कौन होंगे? सोचें आप कौन होंगे? आप क्या कहते हैं आगे, इससे पहले कि मैं आपको हदीस सुनाऊं, कौन होंगे? फुकराल मुस्लिमीन होंगे, गरीबों का मकाम देखें, इस उम्मत के जो फुकरा हैं। और ये बतौर फख्र नहीं, मैं अल्लाह के यहाँ तमाम अगले पिछलों से ज्यादा मुअज्ज़ज़ हूँ, और ये कलाम भी बतौर फख्र नहीं मैं बता रहा हूँ। और दूसरी रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं कायद अल मुरसलीन हूँ, यानी तमाम रसूलों का इमाम, ठीक है। और ये भी फखर के तौर पे नहीं फरमाया कि मैं फखर के तौर पे नहीं कह रहा, सुभान अल्लाह। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखिए कि हम्बल होना कितना ज्यादा था, कितनी आजी है कि ये मैं फखर के तौर पे नहीं कह रहा। हमारे पास दुनिया में किसी को छोटा सा भी मकाम मिल जाए ना, तो इतने फखरिया बताते हैं जहां पे बताने की जरूरत भी ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सब कुछ पहुंचाना था, तो आपने तो जाहिर है बताना ही था अपनी उम्मत को, कोई चीज भी छुपा के नहीं रखी, लेकिन साथ साथ फरमाते जा रहे मैं फखर के तौर पे नहीं कह रहा। और हम जब अपने खानदानों की बड़ाइयां करते हैं, अपनी बड़ाइयां करते हैं, अपने बच्चों की बड़ाइयां करते हैं, तो कितनी फखरिया कर रहे थे, हालांकि उसमें तो कोई फखर की जरूरत भी नहीं। ये तो कोई फखर की बातें भी हैं कि जिनके ऊपर कोई फखर कर सकता है, लेकिन इस पे भी आपने फरमाया मैं फखर फखर के तौर पे नहीं कह रहा। सुभान अल्लाह, अपने नबी से ये चीज भी सीखी। तो फरमाया बास के दरजात बास से ऊपर किए अल्लाह ताला ने। वो कौन से पैगंबर हैं जिनके दरजात बास से ऊपर किए? जो मैंने आपको बता दिया कि नबी अलैहिस्सलाम को दर्जा सबसे ऊपर किया, तो ये अल्लाह की मर्जी है। लेकिन याद रखिए, अल्लाह ताला ने ये तफदील दी है, यानी फजीलत दी है, बाकी हम जो अल्लाह ने फजीलत दी है उसको मानते हैं, लेकिन हम तफरीक नहीं करते। तफरीक का मतलब क्या होता है? फर्क करना कि हमने किसी के माना और किसी को नहीं माना, वो हम नहीं करते। हम मानते सबको हैं, ला नुफरीकु बैना अहदिन मिन रुसुली। इस सूरत के एंड में आएगा ना, जो हम रात को भी पढ़ते हैं, वो आयात आखिरी जो हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि हम किसी रसूल के दरमियान तफरीक नहीं करते। बाकी जितनी भी उम्मतें हैं वो कभी कोई किसी को मानता है और किसी को नहीं मानता, लेकिन मुसलमान हर नबी को मानता है। और इसके अंदर वो किसी में भी वो नहीं करते कि कोई नबी जो है वो नहीं, नाउज़ु बिल्ला, वो कोई नबी नहीं, या उनके ऊपर कोई इतराज, या जैसे दूसरे लोगों ने बनाया हुआ, सबको इज्जत इज्जत देते हैं इक्वली। लेकिन जहां फजीलत की बात आ गई कि किसी का दर्जा अल्लाह ने ऊपर दिया, किसी को मसलन किसी के साथ कलाम किया, किसी को किताब दी, किसी को मेराज पे बुलाया, किसी को कोई कुछ, किसी को कुछ नाम दिया, मकाम दिया, किसी को खलीलुल्लाह बताया, किसी को कलीमुल्लाह बताया, तो ये अल्लाह की मर्जी है। ठीक है, वआतैना ईसा इब्न मरियम अलबय्यिनात, और ईसा इब्न मरियम को रोशन दलाइल दिए, यानी खुले मोजजात दिए। आपको पता है पैदा होते ही तो उन्होंने बातें की थी, मादरजाद अंधे को कोड़ी को हाथ पैरते थे तो वो तंदुरुस्त हो जाता था, मुर्दों को जिंदा कर देते थे अल्लाह के इज़्ज़त से। और आप पढ़ेंगे आगे सुबहान अल्लाह कि वो खुद फरमाते हैं भी इज़्ज़निल्लाह, अल्लाह के इज़्ज़त से मैंने ये किया, अल्लाह के इज़्ज़त से, खुद नहीं कहते कि मैं कर रहा हूँ ये। ठीक है, आसमान से आप पर मायदा उतरा जो हम सूरह मायदा में देखेंगे। और वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, रूहिल कुदुस कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए इनकी मदद की थी अल्लाह ताला ने। यानी यहूदी जो थे वो हद से बढ़ गए थे इनकी तौहीन में, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला ने इनकी मदद फरमाई थी, और अल्लाह ताला ने इनको यानी जब बिल्कुल छोटे थे, बिल्कुल बेबी थे, उस वक्त जो बात करना इनका वो भी एक मौजा है, और जब इनकी ताईद नहीं की, उन्होंने इनको वलदु जिना नऊजुबिल्ला कहा, तो अल्लाह ताला ने रूहुल कुदस के जरिए इनकी ताईद फरमाई। मरियम अलैहिस्सलाम जिस वक्त उनको तकलीफ थी, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त था, उस वक्त भी रूहुल कुदुस ही आए थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही आए थे, और उन्होंने आके फरमाया था कि ये खजूरों को हिलाएं तो आपके ऊपर खजूरें उतरेंगी। और इनकी जो पैदाइश की भी खुशखबरी थी वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही लेकर आए थे। तो ये सारी चीजें हैं। वलौ शाअ अल्लाहु मक्ततल्लदीना मिन बादी, अगर अल्लाह चाहता तो ना लोग आपस में लड़ते झगड़ते इनके बाद, यानी कि इनके बाद रसूलों के बाद पैगंबर आए थे, इसके बाद तो होना ये चाहिए था कि सब लोग एक हो जाते, क्योंकि सारे पैगंबरों का पैगाम एक ही था। क्या पैगाम था सबका? ला इलाहा इल्लल्लाह, शुरू से एक पैगाम है ये, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आगे तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, पैगाम में कोई फर्क नहीं आया, तो होना क्या चाहिए था? सब कोई इख्तलाफ ना होता, कोई आपस के अंदर किसी चीज के ऊपर फर्क ना होता, सब एक इस्लाम के ऊपर होते। लेकिन लोग झगड़ने लगे आपस में, लोग आपस के अंदर लड़ाइयां करने लगे, और किसके बाद? मिम बादी मा जातुमुल बय्यिनात, इसके बावजूद कि उनके पास रोशन दलायल आ गए थे, लेकिन उन्होंने इख्तलाफ किया। यानी इख्तलाफ भी बाज दफा इतना बढ़ जाता है कि झगड़ों तक, लड़ाइयों तक पहुंच जाता है, जंगो जदल तक पहुंच जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर अल्लाह चाहता तो वो करते ही ना ऐसे। तो अब कुछ लोग कह सकते हैं ना, हाँ अल्लाह नहीं नहीं ना चाहा, तो अल्लाह ताला ने क्यों नहीं चाहा? इसलिए कि अल्लाह ने ये इम्तिहान गाह बनाई हुई है, वरना तो इम्तिहान ही खत्म हो जाता अगर अल्लाह ने सबको फोर्सफुली एक चीज पे ही लेना था। देखे कई इनमें से क्या हुआ, फरमाया फमिनहुम मन आमना वमिनहुम मन खफा, इनमें से कोई ईमान लेकर आए, कोई काफिर हो गए। यानी बय्यिनात आ गई थी, रोशन दलाइल ले आए थे, मोजजात ले आए थे पैगंबर, इसके बावजूद लोग आपस में झगड़े, लोग आपस में जंगें की, उन्होंने एक दूसरे को मारा उन्होंने, क्यों? अगर अल्लाह चाहता तो सबको एक कर देता, तो क्यों नहीं किया अल्लाह ने? इसलिए कि अल्लाह ताला ने यही तो देखना है कि कौन है जो अब ईमान लाता है और कौन है जो ये दलायल देख कर भी उलट जाता है, जैसे कोई लोग कहते हैं ना। तो अल्लाह ताला ने सबको क्यों नहीं फिर मुसलमान कर दिया? अल्लाह ने सबको क्यों नहीं ऐसे कर दिया फिर? इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया इसलिए नहीं बनाई कि सबको फरिश्तों की तरह, जैसे फरिश्ते हैं कि उनको प्रोग्राम जैसे कर दिया हुआ है कि वो एक ही चीज कर सकते हैं, वो कोई नाफरमानी कर ही नहीं सकते। अल्लाह ताला ने तो इंसान के लिए दो रास्ते रखे, हिदायत का भी और गुमराही का भी, और उसको अकल दी, समझ दी, और रसूल भेजे, उनके साथ किताबें भेजी, मोजजात भेजे, कि अब इंसान खुद अपनी अकल से चूज करे कि मैंने कौन सा रास्ता लेना, इसी का तो इम्तिहान है। अगर अल्लाह ने जबरदस्ती करना होता तो फिर ये सारी चीजें करने की जरूरत क्या थी, तो कुन कह देना चाहिए और फिर लोग सारे एक रास्ते पे हो जाते, ना रसूलों के आने की जरूरत, ना किताबों की जरूरत, ना मौजों की जरूरत, ना अपनी अकल की जरूरत, फिर तो सारा चीज ही खत्म हो गई ना। असल टेस्ट ही किसका है कि अब ये सारी चीजों को देख के तुम अपनी अकल इस्तेमाल करो और फिर पहचानो कि हक क्या है। और आज भी हक को पहचानना कोई मुश्किल नहीं। जो लोग कहते हैं ना हमें नहीं समझ आती, इतना इख्तलाफ है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कहता है ऐसे करो, कोई कहता है ऐसे करो, हमें तो नहीं समझ आती, ये झूठ बात है, ये गलत बात है, ये बोहतान है अल्लाह के ऊपर। क्योंकि अल्लाह ताला ने इतना साफ बय्यिनात अल्लाह ने उतारी है, इस कदर साफ है ये दीन, इतना क्लियर है और हम तक महफूज पहुंचा है। ये झूठ ना बोले कि जो है हमें समझ नहीं आती क्योंकि इतनी कंफ्यूजन है इसके अंदर, नहीं। हाँ, फिक्री इख्तलाफ आप छोटे मोटे हो सकते हैं, मगर बेसिक मैसेज, बेसिक दीन सेम है, एक है, और उसमें कोई नहीं कह सकता कि हमें नहीं समझ आते। किसी ने कह दिया हाथ यहाँ बांध लो, किसी ने कह दिया यहाँ बांध लो, किसी ने कह दिया ये कर लो, रफा या दैन कर लो, किसी ने कह दिया नहीं कर लो, वो एक अलग बहस है, वो फिकही बहस है। मगर क्या नमाज पढ़ने पे भी किसी का इख्तलाफ है? क्या तौहीद पे भी किसी का इख्तलाफ है? बिल्कुल साफ वाजे है कुरान से, बिल्कुल साफ वाजे है ये हदीसें, हदीसों से ये चीजें। तो इसके बावजूद कि अल्लाह ने तो बय्यिनात उतारी, फिर भी कोई लोग तो माने और कोई फिर भी नहीं माने। वलौ शाअ अल्लाहु मा इक्ततलू, फिर फरमाया अगर अल्लाह चाहता तो ये बहम लड़ते ही ना। इसलिए कि अल्लाह की नाफरमानी करना ये इंसान की ताकत नहीं है, अल्लाह ताला कौन है आगे पता चलेगा, इंसान की ताकत नहीं, अल्लाह ने उसको आजादी दी है तो वो ये कर पा रहा है, ये अल्लाह की दी हुई आजादी है, क्योंकि इसी पे अल्लाह ने उसको टेस्ट करना है, क्योंकि अल्लाह ताला जबरदस्ती नहीं रोक रहा किसी को। वलाकिन अल्लाह यफअलु मा युरीद, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहता है करता है, वो जो चाहे करे, यानी किसी का ये काम नहीं कि वो अल्लाह को क्वेश्चन करे, किसी का ये काम नहीं कि वो ये कहे कि क्यों अल्लाह ने फिर ऐसा किया। तो ये बात कि अल्लाह ताला ने पैगंबरों के अंदर, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि अल्लाह ताला ने पैगंबरों में क्यों ये फजीलतें रखी हैं, क्यों ऐसे दर्जात रखे, उसका जवाब यहाँ पे है। और ये भी कि क्यों लोग अलग-अलग फिरकों में बट गए, क्यों लोगों ने आपस में ऐसे इख्तलाफात किए, क्यों लोगों ने कुफर किया, इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया इम्तिहान का बनाई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अनफिकू, खर्च करो, मिम्मा उसमें से जो, रज़क़नाकुम, रिस्क दिया हमने तुमको, मिन कबली, इससे पहले, अन के, यातिया यौमुन, कि आ जाए एक दिन, ला बैउन, उसमें ना कोई तिजारत होगी, फी इसमें, वला खुल्लतुन, ना कोई गहरी दोस्तियां काम आएंगी, वला शफातुन, और ना कोई सिफारिश। आप यहाँ पे खर्च करने की तरगीब दी गई, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि ये सूरत बदर से पहले नाजिल हुई, और इस वक्त मुसलमानों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की भी जरूरत थी, क्योंकि आगे उनको जंगें लड़नी थी, आगे उनको अल्लाह के रास्ते में निकलना था, उसके लिए माल चाहिए, तो मुसलमानों को उभारा गया। आप देखेंगे कि इस सूरत में एंड तक आप बहुत ज्यादा इन्फाक फी सबीलिल्लाह का जिक्र सुनेंगे, बार बार आएगा, खर्च करो, खर्च करो, किस में से, जो अल्लाह ने रिस्क दिया तुमको। क्या सिर्फ पैसा रिस्क दिया और कुछ नहीं दिया? नहीं, रिस्क में हर वो चीज आ जाती है जो भी नेमत अल्लाह ताला ने आपको दी। और तीन चीजें ऐसी हैं कि जिनका खर्च करना हर एक के लिए मुमकिन हो सकता है, एक माल, एक वक्त और एक जान। ये तीन चीजें खर्च की जाती हैं, या तो अपना माल लगाओ, या तो अपना वक्त दो या तो अपनी जान लगाओ। किसी ना किसी तरह तो आप फिजिकली कोई काम करके कहीं खिदमत कर सकते हैं, आप अपना वक्त दे सकते हैं, कोई ऐसी स्किल आपके पास है, आप अपने माल में से खर्च कर सकते हैं। तो खर्च करो इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें कोई चीज काम नहीं आएगी। यानी ये जो खर्च किया हुआ ना, सिर्फ ये काम आएगा, बाकी जिन चीजों पे इंसान भरोसा करता है ना कि मैं मुश्किल वक्त में मुझे क्या काम आएगा, सबसे पहले जहन में आता है कि मेरे पास इतना पैसा है, बैंक में इतना पड़ा हुआ है, अगर कुछ होता भी है, कोई ऐसा मसला आता है, तो मैं अपना पैसा निकाल लूंगा और उससे कुछ अपने लिए कोई इलाज है या कोई भी चीज है जिस भी मुश्किल में है उसको दूर कर लूंगा। दूसरी क्या चीज जहन में आती है कि मेरे कॉन्टेक्ट बहुत है, दोस्तियां बहुत है। नहीं, दूसरी चीज दोस्ती की भी, कि मेरे जत्था, मेरी खानदान, मेरी फ्रेंडशिप्स बहुत है, मैं बड़े लोगों को जानता हूं, तो वो फ्रेंडशिप खास तौर पे यहाँ पे कहेगी जो बेस्ट फ्रेंड है, कि मेरा फलां फलां फ्रेंड जेन में आ जाता है वो तो फौरन आके खड़ा हो जाएगा अगर मेरे लिए कोई भी मुश्किल हो। और तीसरी सिफारिश कि हमारे कनेक्शन जिनको हम कहते हैं कॉन्टेक्ट कहते हैं, फलां वजीर को मैं जानता हूँ, फलां उसको मैं जानता हूँ, फौरन वो जहन में आता है कि वो भी तो है। लेकिन कयामत के दिन ये तीनों सहारे अल्लाह ताला ने तोड़ दिए कि इनमें से कोई भी चीज नहीं काम आएगी। तो यानी क्या काम आएगा? जो तुमने खर्च किया होगा। ये जो जितना कुछ आज हमारे बैंकों में पड़ा हुआ है ना, जो मेरे नाम से या आपके नाम से या जो हमारे लॉकर्स में है ना, ये कुछ भी मेरे और आपके काम नहीं आना, कुछ भी नहीं आना, क्योंकि जब हमने मर जाना है तो ये लॉकर्स में पड़ा रहेगा और हमारे वारसों को मिल जाएगा। और हमें इससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। हमें तो उससे मिलेगा जो हमने अल्लाह के रास्ते में लगा दिया। तो हमें कितना पसंद है अपने वारसों के लिए छोड़ के जाना। ये नहीं मैं कह रही कि आप कुछ भी ना छोड़ें, लेकिन इतना लालच ना करें कि बस हाँ अभी पड़ा रहे, कल को क्या पता हमें जरूरत पड़ जाए। हाय, जिस वक्त पैदा हुए थे उस वक्त कितना माल लेकर आए थे? खाली हाथ आए थे और नंगे बदन थे। किसने आपको दिया? अल्लाह ने। वो जो अल्लाह आज तक खिलाता रहा वो आगे नहीं खिलाएगा, लेकिन मुस्तकबिल का जो खौफ होता है ना, क्या पता कल को कोई ऐसा हो जाए, क्या पता ये इस वक्त की जरूरत पड़ जाए, क्या पता ऐसे, उस क्या पता के पीछे जो है ना इंसान खर्च नहीं कर पाता। इन यहां दिखा दिया गया कि उस वक्त क्या करोगे जब तुम्हारे ये तीनों सहारे साथ छोड़ जाएंगे, उस वक्त तो सिर्फ यही चीज काम आएगी। इतना कि एक खजूर भी दी होगी ना अल्लाह के रास्ते में, एक खजूर भी खलास के साथ, तो अल्लाह उसको भी बहुत पहाड़ के बराबर कर देगा। अब ये मतलब नहीं है कि आपके बैंकों में लाखों पड़े हो और आप कहें मैंने खजूर तो दे दी है ना, वो तो बहुत पहाड़ के बराबर ही हो जाएगी। नहीं, जिसके पास जितना है उसको उसके मुताबिक खर्च करना है, जितना जिसके पास, जो लाखों में खेल रहा है वो कोई हजार तो दे, जो हजारों में है वो कोई कुछ सौ तो दे, किसी के पास 100 है तो वो कुछ कुछ चंद रुपए तो दे, हर कोई दे, क्योंकि रिस्क को अल्लाह ने हर एक को दिया है। जिसके पास कम है, जिसके पास एक रोटी है, वो उसमें से दो निवाले किसी को दे दे, लेकिन दे, और वक्त में से दो। इसमें इंसान भी बहुत हेरस करता है कि नहीं मेरा वक्त है, मैं इसको बचा लूं, किस चीज के लिए बचा लूं? बेकार कामों के लिए। जो वक्त इसमें लग जाएगा वही तो काम आ जाना है, वही आपका वक्त बच गया, बाकी सब जाया हो गया। यकीन करें बाकी सब जाया। ये जो इस वक्त आप बैठे हुए ना पढ़ने के लिए, ये वक्त है जो आपने बचा लिया जिंदगी में से, या किसी के काम आ रहे हैं, या कोई इबादत में आप लगे, वो आपका बच गया, बाकी सब जाया। जितने में सो गए, जितने में बाथरूम में बैठे रहे, जितने में फोनों पे बैठे रहे, जितने पे टीवी पे बैठे रहे, जितने में फेसबुक पे बैठे रहे, सब जाया, खत्म हो गया, आपने उसको बहा दिया। ये कीमती है। तो फरमाया अनफिकू, खर्च करो। तुम्हें याद नहीं वो दिन कि जिस दिन वहां पे कोई सहारा नहीं होगा, फिर क्या करोगे? और वाकई सिर्फ ये चीज इंसान से खर्च करवा सकती है कि क्या करूंगी मैं उस दिन। जो चीज हम चाहते हैं कि हमें वहां पे मिले, बच जाए, मेरी सेव हो जाए, वो सेफ बैंक में रखने से नहीं होगी, वो सेफ अल्लाह के अकाउंट में जमा कराने से होगी। एक इंसानों के बैंक है, एक इंसानों के तरीके हैं कि वहां पे आप सेव कर लें अपनी चीज, एक अल्लाह का तरीका है कि उसके पास सेव कर लें। लेकिन ये करेगा कौन? जिसको अल्लाह के वादों पे यकीन होगा वही करेगा ना, वरना तो इंसान अपने पैसे ही गिनता रहेगा कम ना हो जाए, अब दे दिया तो कम हो जाएगा। ये चीज फिर इंसान से खर्च नहीं करवाती, संभाल संभाल के रखते रहते, किस दिन के लिए, कल का पता भी नहीं है कि कल भी जिंदा रहना है कि नहीं, लेकिन मुट्ठी बंद की हुई है। कैसी ये नादानी है ना। अल्लाह ताला ने फरमाया वल काफिरून हुम ज़ालिमून, काफिर वैसे भी वो ही जालिम है, मगर यहाँ पे काफिर का मतलब क्या है, जो ये बात को ना माने, वो फिर भी नहीं समझ रहे, फिर भी नहीं खर्च करते, वो ही जालिम है। उनके पास है अल्लाह का दिया हुआ, अल्लाह फरमाते रज़क़नाकुम, हमने रिस्क दिया तुमको, उसमें से लगाओ। अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से भी नहीं लगाना किसी, ये नहीं है कि अपना कुछ होता हमारा तो फिर तो अलग बात थी, पता नहीं फिर क्या करते। अभी ये भी पता है कि ये भी हमारा अपना नहीं है, तब भी नहीं हम देते।